मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर के लिए मैंने विषय चुना है अमेरिका का स्वतंत्रता आंदोलन, या आप इसे अमेरिका की आजादी भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको याद होगा अगर आप मेरा डेली ऑडियो लेक्चर कंटिन्यूअस सुन रहे होंगे तो काफी पहले, लगभग 3 सप्ताह पहले मैंने आपसे एक बात कही थी, और वो यह कि इस बार के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस की मैं बात कर रहा हूं, जो अमेरिका का स्वतंत्रता आंदोलन है या अमेरिका को जो आजादी मिली है वो मुझे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मालूम पड़ रहा है। उसके पीछे एक कारण था। कारण यह है मित्रों कि आप देखते हैं कि जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बने हैं तब से वो अमेरिका की बात करने लगे हैं, बाई अमेरिकन्स, हायर अमेरिकन्स, इस तरीके की बातें होने लगी हैं। प्रवासियों के खिलाफ उनकी कुछ नीतियां आने लगी हैं, H-1B वीजा जो है वो प्रवासियों को रोकने की कोशिश है। वो चाह रहे हैं कि जो अमेरिकन कंपनी है वो अमेरिकन्स को ही नौकरी दें, बाहर के लोगों का आना कम हो। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका जिनसे बना है अब वह लगभग लगभग उन्हीं के विरुद्ध उठकर खड़ा हो गया है। अमेरिका को मूलतः प्रवासियों का देश माना जाता है। अगर अमेरिका का आप इतिहास देखने जाएंगे तो अमेरिका का इतिहास 250-300 साल से पुराना इतिहास नहीं, आजादी के बाद का। अगर उससे पहले का लेंगे तो थोड़ा सा ब्रिटेन का इतिहास है, मतलब टोटल समझिए कि 400-500 साल का इतिहास है अमेरिका का, बड़ा लंबा इतिहास नहीं है। अमेरिका तो मूलतः एक देश था जहां पर रेड इंडियंस रहते थे। आपको मालूम है कि किस तरह से बाद में वहां कुछ लोग पहुंच गए और फिर ब्रिटेन पहुंचा और ब्रिटेन ने वहां अपना उपनिवेश स्थापित किया, और इसी ब्रिटेन के खिलाफ फिर अमेरिका ने आंदोलन की अपनी लड़ाई छेड़ी और अंत में वो ब्रिटेन से आजाद हुआ। तो सवाल यह है कि जो देश प्रवासियों के कारण ही बना, जहां अमेरिकन मूल के लोग हैं ही नहीं, आज वही देश उन्हीं प्रवासियों के खिलाफ कदम उठा रहा है, जबकि अमेरिका मूलतः प्रवासियों का देश है। तो दोस्तों, इस लिहाज से मुझे लगा कि नहीं, अमेरिका की आजादी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस साल के लिए हो सकता है। तो उस समय मैंने वायदा किया था कि अगर समय मिला तो मैं कभी इस पर बात करूंगा, और आप लोगों को सजेस्ट मैंने किया था कि इस पर आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। एक बात और भी है फ्रेंड्स, ये तो चलिए करंट से हम जोड़ करके जब अपने लिए टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, उससे जुड़ी हुई बात है। आप अगर अपने सिलेबस को उठाकर देखेंगे, स्पेशली जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर के सिलेबस को, मेंस की बात मैं कर रहा हूं, जिसमें हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो आप देखेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री में जो मेंशन किया हुआ है वह विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं, विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं। अगर हम 18वीं सदी की बात करते हैं तो इसका मतलब हो गया सन 1700 के बाद से जो घटनाएं घटी हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है, प्रमुख घटनाएं। आपको मालूम है अमेरिका जो आजाद हुआ है 1776 में हुआ है, तो अमेरिका आपके सिलेबस में आ जाता है। फ्रांस की क्रांति इसके 3 साल बाद ही हुई है, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, और फ्रांस की क्रांति पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो औद्योगिक क्रांति है वो इसी के आसपास ही घटित हुई, और अगर आप पेपर उठा करके देखेंगे तो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति पर, इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति पर बकायदे क्वेश्चन पूछा गया है कि इंग्लैंड में ही क्यों हुई। इसका मतलब है कि जैसे ही औद्योगिक क्रांति होती है विश्व का आधुनिक इतिहास शुरू हो जाता है, और उसकी जो बड़ी मूलभूत बातें हैं वो आपकी जानकारी में होनी चाहिए। ठीक है, भले ही फ्रेंड्स आपके फर्स्ट पेपर में जो वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर टोटल 20 क्वेश्चंस हैं तो दो तीन चार के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2016 में तो और भी कम पूछे गए, 1 या 2 क्वेश्चन ही हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें ढिलाई दें, क्योंकि जब आप ढिलाई देने की नीति अपनाएंगे तो फिर कितनों को ढिलाई देंगे। तो दोस्तों, इसी को आधार बनाकर फिर मुझे लगा कि नहीं, अमेरिका की आजादी पर मुझे कुछ बातें करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आइए मैं अब थोड़ी सी मेन पॉइंट्स की तरफ आपका ध्यान ले जा रहा हूं, उन मेन पॉइंट्स की तरफ जो आपको शायद क्वेश्चन लिखने में मदद कर सके, तो इसलिए मैं थोड़े से अलग तरीके से आपसे इसके बारे में बातें करूंगा। दोस्तों, एक बड़ी एक विचित्र सी स्थिति है। जब आप अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन को पढ़ेंगे तो आपको यदि कहीं कहीं ये लगे कि भारत का भी स्वतंत्रता आंदोलन तो बिल्कुल इसी तरह का था, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मैं जानबूझकर यह वाक्य कह रहा हूं। यह वाक्य मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि सिविल सर्विस में सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछने की तो अब आप उम्मीद कर ही नहीं सकते कि अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन के कारण बताइए। हाँ, इस तरीके से जरूर पूछा जाता है, जा सकता है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के कारण लगभग लगभग समान रहे हैं। इस तरह से जरूर पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने वाक्य जानबूझकर कहा कि आपको लगेगा कि आप स्वतंत्रता आंदोलन अमेरिका का पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका साम्य काफी कुछ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से है, बशर्ते कि आप मेरे इसको सुनने से पहले या अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन को पढ़ने से पहले भारत का स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ चुके हों, उसके बारे में जानते हों। उसका देखिए रीजन है। रीजन बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, कि अमेरिका पर भी उसी का शासन रहा है जिसका शासन भारत पर था, वो ब्रिटेन। तो देश एक ही है तो स्वाभाविक है कि उसकी जो नीतियां होंगी वो लगभग लगभग एक जैसी ही होंगी, क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, उसको बाजार चाहिए था, तो अमेरिका का भी इस्तेमाल वो बाजार के रूप में करेगा और भारत का भी इस्तेमाल वो बाजार के रूप में करेगा। उद्देश्य तो एक ही है, आर्थिक शोषण। हाँ, अब आर्थिक शोषण किसी का कैसे किया जा सकता है उसके रूप थोड़े से अलग अलग होंगे, कि भारत का वो किसानों और दस्तकारों को और रेवेन्यू टैक्स वगैरह बढ़ा करके राजाओं की रियासतों को हड़प करके करेगा, तो अमेरिका में वो दूसरे तरीके से करेगा। अमेरिका में जिन चीजों का शोषण हो सकता है उन्हीं चीजों का तो शोषण करेगा। देखिए, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज यहां ये बता रहा हूं। चलिए हम आर्थिक कारण को लेते हैं, अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन के जो आर्थिक कारण है। इसका मतलब साफ है कि लोग अब मुक्ति पाना चाह रहे हैं, ये जो उपनिवेशवादी सत्ता है इससे मुक्ति पाना चाह रहे हैं। तो मुक्ति क्यों पाना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है फ्रेंड्स वो आर्थिक। और जहां ब्रिटेन है, मतलब पूरे के पूरे उपनिवेशवाद के खिलाफ, चाहे वो स्पेन हो चाहे वो फ्रांस हो, इन सब का मुख्य कारण आर्थिक ही था, क्योंकि यहां औद्योगिक क्रांतियां हो चुकी थी, इनको मार्केट चाहिए था, और जहां जहां ये गए वहां के जबरदस्त रूप से आर्थिक शोषण में लग गए और उसी के खिलाफ फिर लोगों ने विद्रोह किया या आंदोलन किया। अब आप देखिए कि अमेरिका में क्या हो रहा है, इसको अब आप भारत के पैरेलल चाहे तो रखकर सोच सकते हैं। दोस्तों, जैसे वहां जो एक वर्जीनिया स्थान है, प्रांत है, वहां तंबाकू की खेती बहुत होती है और उस समय इस तंबाकू का व्यापार भी बहुत होता था। अब आप देखिए कि ब्रिटेन ने क्या फैसला किया कि वर्जीनिया से जो तंबाकू दूसरे देशों को भेजा जाएगा तो वो सारे के सारे जहाज ब्रिटेन के ही होंगे। मतलब दूसरे जहाज तंबाकू का निर्यात, मतलब तंबाकू का ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। मतलब अमेरिकन्स जो थे, जिनके पास इस तरह के पानी के जहाज थे जो सामान पहुंचा सकते थे, वो एकदम दो कौड़ी के हो गए, उनको कोई रास्ता नहीं रहा। इसके बाद वो क्या कहते हैं कि नहीं, केवल ये ब्रिटेन ये जो जहाज हैं यही ब्रिटेन के नहीं होंगे, बल्कि उस जहाज पर काम करने वाले 75% लोग भी ब्रिटेन के होंगे। आप देख रहे हैं कि कैसे रोजगार का संकट उस समय भी रहा होगा, 75% ब्रिटेन के होंगे। अब अमेरिकन्स को खत्म हो गई संभावना नौकरी मिलने की, काम मिलने की। इसके बाद फिर क्या किया, जैसे हमारे यहां उन्होंने दस्तकारी को खत्म कर दिया। आप देखते हैं ना कि गांव में हमारे यहां जो दस्तकारी प्रथा थी, जो हम बर्तन बनाते थे, घड़े बनाते थे, गलीचे बनाते थे, कपड़े बुनते थे, उन सबको नष्ट कर दिया इनके मशीन ने। अमेरिका में उन्होंने क्या किया, अमेरिका में तांबा गलाने का काम और फर की टोपियां जो चिड़ियों के पंख होते हैं ना, उससे जो टोपियां बनती है, फॉरेन में बहुत पॉपुलर है टोपियां, आप देखेंगे कैप वगैरह पहने हुए उन लोगों को, तो ये बनाने का काम वहां का एक तरह से दस्तकारी जैसा था। जैसे हमारे यहां के लोहार थे तो वो तांबा गलाते थे वहां और फर की टोपियां बनाते थे, तो उस पर नियंत्रण लगा दिया कि नहीं ये नहीं बनाएंगे, ताकि उनकी अपनी टोपियां वहां से मशीन से बनी हुई टोपियां यहां आए और बिक सके। हमारे यहां भी यही किया, इसीलिए तो भारत ने स्वदेशी आंदोलन छेड़ा था कि नहीं हम अपनी चीजें इस्तेमाल करेंगे, आपकी चीजें इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो बेसिकली विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार मूलतः स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल से जुड़ा हुआ था कि हमारे अपने उद्योग विकसित हो, तो उस पर नियंत्रण लगा दिया। और फिर 1750 के आसपास वो एक लौह अधिनियम लेकर के आया और उसने पहले अमेरिका में जो है ना घरों में लोहे की ढलाई की जाती थी, लोहे की, वो भी उनके एक तरह से दस्तकारी जैसा काम था, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया। अब हो गए वहां के लोग बेकार, और उस समय और तो कुछ दूसरी चीजें थी नहीं सबसे बड़ा, या तो खेती या फिर दस्तकारी। तो इस अमेरिका में बिल्कुल ब्रिटेन ने वही नीति अपनाई जो उसने भारत में अपनाई थी, आप देख रहे हैं। इसके बाद जो दूसरे कारण थे दोस्तों, जिसमें कि बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि संवैधानिक कारणों में अगर हम ले कि नियम कानून किस तरीके थे, पहला तो यह था कि जो अमेरिका की जितनी भी बस्तियां थी उन पर इंग्लैंड का बड़ा कड़ा नियंत्रण हो गया। इंग्लैंड के रूल्स, रेगुलेशंस, कानून सब के सब अमरीकी बस्तियों पर लागू होने लगे, तो लोगों का जीना हराम हो गया। वहां के जो एग्जीक्यूटिव थे, एग्जीक्यूटिव में तो ब्रिटिश गवर्नर का प्रभुत्व होता ही था, भले ही वो थोड़े बहुत अधिकार दे दे जो लोगों को, लेकिन जो अल्टीमेट जो राइट थे वो गवर्नर्स के पास थे। जैसे हमारे यहां भी देखिए अल्टीमेट राइट्स वायसराय के पास ही होते थे, ये तो हमने स्वतंत्रता आंदोलन छेड़ते छेड़ते फिर 1919 के अधिनियम से थोड़े से अधिकार मिले भारतीयों को, 1935 के अधिनियम से फिर थोड़े से अधिकार मिल गए, अदरवाइज तो सर्वे सर्वा तो गवर्नर या गवर्नर जनरल या वायसराय थे, तो वहां गवर्नर को अधिकार होता था। और इसके बाद दोस्तों एक और अच्छी चीज उस समय तक ये हुई कि यूरोप में कुछ ऐसे फिलासफर हो गए थे जिसमें आपने नाम सुना होगा, हॉब्स, लॉक, रूसो, ऐसा जो फिलासफर थे, ये बेसिकली जनतांत्रिक भावनाओं वाले फिलासफर थे, ये जनता के अधिकार की बात करते थे, उनके स्वतंत्रता की बात करते थे, तो इनके जो विचार थे ये भी धीरे धीरे अमेरिका पहुंचने लगे थे। भारत में भी देखिए कि जो हमारे यहां से पढ़ने गए ब्रिटेन, जब उन्होंने वहां की लोकतांत्रिक पद्धति को देखा, वहां की जीवन प्रणाली को देखा, तो वो भारत लौटे और उन्होंने जब कंपेयर किया तो लगा कि अरे हमारे यहां तो ये चीजें हैं नहीं, जबकि वो इतनी शानदार चीजें हैं, तो उन्होंने यहां के लोगों में चेतना जागृत की। तो विचारों का तो बहुत बड़ा अस्तित्व होता है, फ्रांस की क्रांति के पीछे विचारधाराओं का ही सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि ऐसे विचार फ्रांस में पहुंचे कि उसने लोगों को क्रांति के लिए उद्वेलित कर दिया। तो अमेरिका में भी ऐसा हुआ दोस्तों, जो वहां के विधानमंडल थे, राज्य थे, उन राज्य में विधानमंडल हुआ करते थे, तो उन पर जो अपर क्लास के लोग थे, जो उच्च वर्ग के लोग थे, उनका अधिकार था, मतलब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, मजदूर, कृषक, इनकी कोई औकात ही नहीं थी, तो कुलीनों का वर्चस्व था। फ्रांस की क्रांति भी इन कुलीनों के खिलाफ ही हुई थी। इसके बाद इस समय तक एक तरीके से कह लीजिए कि अमेरिका में भी भले ही वो छोटा सा वर्ग था, एक बुर्जुआ वर्ग विकसित होने लगा था, मतलब पूंजीपति लोग होने लगे थे, भारत में भी होने लगे थे, हमारे यहां आखिर में बिड़ला, टाटा, जमनालाल बजाज जैसे उद्योगपति तो थे ही। अब इन उद्योगपतियों को लगता था कि हमारे उद्योग तब तक ग्रो नहीं करेंगे जब तक कि हमारे अपने देश का शासन नहीं हो जाएगा, ये ब्रिटेन वाले तो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। देखिए इसीलिए बिड़ला वगैरह ने गांधी जी को इतना सपोर्ट किया, जब बजाज जी ने इतना सपोर्ट किया कि हमको देश की आजादी चाहिए तभी हमारे उद्योग पनप सकेंगे, तो वहां का जो बुर्जुआ वर्ग था जो उभरने लगा वो एक सपोर्टर हो गया फ्रीडम मूवमेंट का दोस्तों। फिर जो नवयुवक और जो दूसरे उद्यमी थे, जो श्रमिक थे, उन सब में भी थोड़ा सा एक जोश आया कि नहीं हमें अपनी आजादी चाहिए। और इतने में ही दोस्तों ये क्या हुआ कि वहां 1773 में एक घटना है ब्रिटेन अमेरिका की जो इतिहास में भी बहुत फेमस है, वो बोस्टन की चाय पार्टी। बोस्टन की चाय पार्टी, बोस्टन एक जगह है न्यूयॉर्क के पास ही है, नाम आपने सुना, MIT जो है वो यही है, आजकल MIT तो वर्ल्ड का बेस्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट है आप जानते हैं। तो बोस्टन जो है वो समुद्र के किनारे है, तो वहां के बंदरगाह पे कुछ जहाज रुके हुए थे जो ब्रिटेन के जहाज थे और उनमें चाय लदी की पेटियां लदी हुई थी। तो इन आंदोलनकारियों ने किया क्या कि उस जहाज के अंदर घुस गए और उन पेटियों को निकाल निकाल करके समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया, और ऐसा उन्होंने किया था ब्रिटेन की चाय की नीति के विरोध में। उस समय ब्रिटेन जो चाय की नीति लेकर आया था, मित्रों हम चाय की नीति पर नहीं जा रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, वो तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको केवल मेन पॉइंट्स बता रहा हूं, जिसको आप कह लीजिए माइलस्टोन्स बता रहा हूं। दोस्तों भड़क गई क्रांति, भड़क गई, अब तो ब्रिटेन ने अपना दमन शुरू कर दिया, उसको जो कुछ भी करना था शुरू कर दिया। 73 में हुआ तो 74 में एक साल के बाद ही, तो जो जितने भी अमरीकी उपनिवेश थे, मतलब जिसको आप कह लीजिए आज अमेरिका के राज्य कह लीजिए, तो जो राज्य थे उन्होंने एक सम्मेलन आयोजित किया फिलाडेल्फिया में। ये जो फिलाडेल्फिया भी है ये न्यूयॉर्क के पास ही है, मतलब मैं समझता हूँ न्यूयॉर्क से होगा करीब 150-100 किलोमीटर, क्योंकि मैं फिलाडेल्फिया भी गया हुआ, न्यूयॉर्क भी गया हुआ, तो इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। न्यू जर्सी से 150-200 किलोमीटर का, न्यू जर्सी तो आप यूं मान लीजिए कि 50-60 किलोमीटर ही है न्यूयॉर्क से, सटा हुआ ही है। इनका सम्मेलन आयोजित हुआ और उस सम्मेलन में मानवाधिकारों की घोषणा की गई। बट नेचुरली कि मानवाधिकारों की घोषणा का मतलब है कि हमें अपना अधिकार मिलना चाहिए, और बकायदे ये फैसला किया गया कि जो ब्रिटेन की वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार किया जाए। आप देखिए कि हमारे यहां भी बिल्कुल यही हुआ है कि उसकी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, क्योंकि हमारे अपने दस्तकार, हमारे अपने उद्योग नष्ट हो रहे थे। फैसला किया गया और फिर दोस्तों 1775 में ब्रिटेन की सेना के साथ सीधे टकराव हो गया, और ये टकराव इस रूप में हुआ कि ब्रिटेन की संसद ने टैक्सेस बहुत बढ़ा दिए, अमेरिका के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए, पहले से ही बहुत हाई टैक्सेस थे। तो अमेरिका ने एक नारा दिया, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हम तब तक टैक्स नहीं देंगे जब तक पार्लियामेंट में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होगा। ये बहुत ही फेमस नारा है जो अमेरिकन मूवमेंट ने, फ्रीडम मूवमेंट ने दुनिया को दिया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। और इसके बाद फिर टकराव शुरू हो गए, और उस टकराव का वाशिंगटन जो थे, इनके जो पहले राष्ट्रपति बने, वो उस समय ये जो स्टेट्स थे उनके कमांडर थे, सेनापति थे। तो ब्रिटेन की सेना के साथ टकराव हुआ और ब्रिटेन की सेना पराजित हुई, और पराजित होने के बाद पहली बार इसी फिलाडेल्फिया नामक स्थान पे 13 अमरीकी उपनिवेशों में, केवल 13, आज तो हमें 50 दिखाई देते हैं ना, ये बाद में धीरे धीरे शामिल होते चले गए, उस समय सिर्फ 13 उपनिवेश थे। उन्होंने 4 जुलाई 1776 को, डेट याद रखी कि 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और देश आजाद हो गया। तो आज भी अमेरिका 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, और वहां जब स्वतंत्रता दिवस आती है तो एक दिन की छुट्टी नहीं होती हमारी तरह से, वहां 3-4 दिन की छुट्टियां होती हैं। एक बार तो मैं 4 जुलाई को वहां रहा भी हूं, एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन कम से कम 3 दिन की छुट्टियां तो होती हैं स्वतंत्रता दिवस पर, और लोग बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। मुझे लगता है कि शायद अमेरिका की यही दो सबसे बड़े त्यौहार हैं, एक तो ये स्वतंत्रता दिवस और दूसरा क्रिसमस। क्रिसमस तो 15-15 दिन तक, 3-3 सप्ताह तक लोग मनाते रहते हैं। तो दोस्तों ये स्वतंत्रता ब्रिटेन को, अमेरिका को ब्रिटेन से प्राप्त हो गई। ये तो कहानी है फ्रेंड्स। अब आप देखिए कि जो इंपॉर्टेंट, फिर जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, आप देखेंगे कि 3 साल के बाद 1776 में अमेरिका आजाद हुआ, और 1789 में, आपको कुछ सालों के बाद ही फ्रांस की क्रांति हो गई। अब आप देखिए कि फ्रांस की क्रांति की बात पूरी दुनिया में की जाती है, और फ्रांस की क्रांति का पूरी दुनिया पर असर हुआ, मतलब उसको ये कह लीजिए कि दुनिया को बदल देने वाली क्रांति कही जाती है। अमेरिका में आंदोलन हुआ, क्रांति तो नहीं हुई, आंदोलन हुआ, तो इसको दुनिया को बदलने वाला आंदोलन नहीं कहा जाता, लेकिन दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ा। देखिए फ्रांस की क्रांति को क्यों दुनिया को बदलने वाली क्रांति कहा जाता है, उसके 2-3 स्पेशल करेक्टर थे, आपको मालूम होने चाहिए, इस पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला तो यह है दोस्तों कि वो जन क्रांति थी, आंदोलन नहीं था, वो क्रांति थी, रिवोल्यूशन था, और वो रिवोल्यूशन किया किसने था, आम लोगों ने किया था। दूसरी बात, किसके खिलाफ किया था, राजा के खिलाफ किया था, मतलब फ्यूडल सिस्टम के खिलाफ रिवोल्यूशन था, यह तो आंदोलन था जो उपनिवेशवादी सत्ता के खिलाफ था। फिर चलिए, इन्होंने, अब इनको अपनी आजादी मिल गई, ये अपना करने लगे, नो डाउट कि इनका लोकतांत्रिक प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा, लेकिन जो फ्रांस का जो नारा था वो सबसे बड़ा था, क्योंकि उसमें समता की बात थी, स्वतंत्रता की बात थी, और बंधुत्व की बात थी, यानी कि दुनिया में सब लोग समान हैं, सब लोग भाई हैं एक दूसरे के, और सबको आजाद होना चाहिए। तो ये तो पूरी दुनिया के लिए आह्वान हो गया ना, पूरी दुनिया को दिया गया संदेश हो गया फ्रांस की क्रांति के द्वारा, तो उसने पूरी दुनिया पर असर डाला। लेकिन अमेरिका की क्रांति के साथ ऐसी कोई बात नहीं थी, मतलब आंदोलन के साथ, इसलिए उतना असर तो नहीं हुआ जितना फ्रांस की क्रांति का हुआ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन का कोई असर नहीं हुआ। दोस्तों पहली बात तो यह है कि ब्रिटेन को पराजित किया, तो दूसरे देशों को भी लगा कि नहीं, ब्रिटेन इतना सर्वप्रभु, मतलब इतना शक्तिशाली नहीं है कि उसको पराजित न किया जा सके। दूसरे देशों में भी लगा कि नहीं, हमको भी अपनी प्रभुसत्ता चाहिए। अमेरिका में पहली बार संघात्मक सरकार बनी है, 13 उपनिवेश मिलकर के उन्होंने अमेरिका का निर्माण किया शुरू शुरू में। तो संघात्मक सरकार अस्तित्व में आ गई कि नहीं, छोटे छोटे राज्य मिलकर के भी एक राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। और बाद में देखेंगे आप जर्मनी और इटली का जो एकीकरण हुआ है, उन्होंने अमेरिका से सूत्र लिए, पैटर्न करके उन्होंने अपना एकीकरण किया, एक बड़ा राज्य बनाया। फिर अमेरिका आने के बाद उन्होंने संघात्मक सरकार बनाया था, फेडरल स्ट्रक्चर था उनका, तो उन्होंने लिखित संविधान की भी नींव रखी। ब्रिटेन तो इससे पहले उसके पास संविधान था लेकिन वो तो अलिखित संविधान है, तो अमेरिका ने यह बताया दुनिया को कि नहीं, लिखित संविधान होना चाहिए। फिर उसने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को लागू किया। एक विचारक हुए हैं दोस्तों, अगर आपने नाम सुना, मॉन्टेस्क्यू। ये जो सेपरेशन ऑफ पावर की जो थ्योरी है वो मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी है, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों की शक्तियां बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए, किसी पर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इसको शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं, ये मॉन्टेस्क्यू का दिया हुआ है। ब्रिटेन ने बिल्कुल उस पैटर्न को अपनाया, तो बट ने चले कि इससे भी लोगों को एक लाइट, एक प्रकाश मिला। फिर ब्रिटेन ने भी अपने संविधान में शुरू से कह दिया कि जो धर्म है यह व्यक्तिगत मामला है। तो आप देखते हैं कि धर्म निरपेक्षता की वहां से एक लहर सी चल पड़ी। और दोस्तों, जब अमेरिका अपने इस आंदोलन में सफल हो गया तो यूरोप में भी एक उदारवादी विचारधारा और तेजी से पनपी, कि नहीं, अब ये जो ब्रिटेन की जो संकीर्ण स्वार्थ नीति है इसको हम ज्यादा दिन तक चला नहीं पाएंगे। कुछ लोग दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि जो फ्रांस की क्रांति को जो वैचारिक सहयोग मिला, मतलब फ्रांस की क्रांति तो इसके बाद की है, तो फ्रांस ने भी ये देखा कि यार अमेरिका ने ब्रिटेन को पराजित कर दिया, तो वहां के लोगों को लगा कि नहीं, हम भी शासक को पराजित कर सकते हैं। तो कुछ लोग मानते हैं कि जो फ्रांस की क्रांति थी वो ब्रिटेन अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन से थोड़ी बहुत प्रभावित थी। और दोस्तों, आप देखेंगे कि जब अमेरिका से जब ब्रिटेन पराजित हो गया, तो उसने जो भारत के प्रति जो नीति थी, भारत पर भी वो शासन करता था, तो वो थोड़ा सा नरम पड़ा। उसको लगा कि यहां अमेरिका ने ये कर दिया है तो भारत भी ये कर सकता है, तो अमेरिका के प्रति थोड़ा सा नरम हुआ। और उसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल लेकर के आए कि नहीं नहीं, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी को ही सब कुछ नहीं, उनको कंट्रोल करना चाहिए, तो नहीं तो ये लूट खसोट के मामले में सबको ब्रिटेन के खिलाफ खड़े कर देंगे। तो वो हुआ। और दूसरा, फिर इसके बाद एक थॉट चला कि ये जो वणिकवादी जो नीति है ना, जिसको वाणिज्यिक नीति कहेंगे आप, कि व्यापार करो, कमाओ, शोषण करो, तो इसके खिलाफ एक आलोचना का भी दौर पूरी दुनिया में शुरू हो गया। तो नए नए विचार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आने लगे। तो ये दोस्तों अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव रहा। फ्रेंड्स, अब जितना भी वक्त था उसमें मैंने बहुत सारी चीजें समेटने की कोशिश की है, और मेरा उद्देश्य आपको अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बताना नहीं था, बल्कि उसके सार से परिचित कराना था, और वह सार परीक्षा की दृष्टि से होना चाहिए। तो उस उद्देश्य से मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी हैं। अब आपको इसे डिटेल में पढ़ना चाहिए, और मैंने जो एक रास्ता बताया है, अगर आपको ठीक लगता है तो उस रास्ते को आधार बनाकर, उस प्रकाश को आधार बनाकर, उन बिंदुओं को आधार बनाकर अगर आप अमेरिका के इतिहास को पढ़ेंगे, आपको मजा भी आएगा, और सच पूछे तो ज्यादा आपके लिए उपयोगी भी होगा। तो मित्रों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।